समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा और आज इन पंक्तियों के साथ इस अंक की शुरुआत करती हूं। मैं कहीं पर खो गया हूं, दिन दिवस और घट प्रहर की गिनती जैसे भूल बैठा, शून्य अंतर व्याप्त करके तन चेतन को हूल बैठा। मैं कहीं पर खो गया हूं। जी हां, शायद यही स्थिति रहती है मादक पदार्थों या कहें ड्रग्स का सेवन करने वालों की। उन्हें लगता है कि ऐसा करके वे सब उलझनों से पार पा लेते हैं या पार पा लेंगे, पर वास्तव में सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को वे नर्क की ओर धकेलते हैं। नशाखोरी समाज को दीमक की तरह खोखला कर सकती है। हमारे देश में सरकार इस समस्या से पूरी सख्ती से निपट रही है और ठोस कदम उठा रही है। 2047 तक देश को नशा मुक्त बनाने का दृढ़ संकल्प लिया गया है। इस बुधवार यानी 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इस ज्वलंत मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए आज हम भी पब्लिक स्पीक में इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। विषय है नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे से निपटना। इससे जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के उपमहानिदेशक नीरज गुप्ता और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में साइकैट्रिस्ट डॉक्टर लोकेश शेखावत। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
धन्यवाद।
श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइन्स खुली हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी जो दिल्ली का कोड है उसके बाद 2331-4444 या 2371-7106 और 2342-1050 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। इस पर भी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और श्रोताओं, अब हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। नीरज जी, सबसे पहले आप ही से पूछना चाहूंगी कि मादक पदार्थों की रोकथाम और नियंत्रण में NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की क्या भूमिका रहती है?
धन्यवाद प्रियंका जी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NDPS एक्ट 1985 के तहत 1986 में स्थापित किया गया था तथा यह गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नेशनल नोडल कोऑर्डिनेशन एजेंसी की तरह से काम करता है और पूरे भारतवर्ष में स्टेट में सेंटर में जितनी भी एजेंसी नारकोटिक्स से कंट्रोल और प्रिवेंशन से रिलेटेड जो कार्य कर रही है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का प्रमुख कार्य है। इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की 30 जोनल यूनिट्स हैं। जो जोनल यूनिट्स जो हैं वो एनफोर्समेंट के कार्य में लगी हुई है। ये जोनल यूनिट्स लगभग हर स्टेट में उपस्थित हैं आज के समय में और जोनल यूनिट्स से हम एनफोर्समेंट साथ के साथ स्टेट की एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन का कार्य करते हैं।
जी डॉक्टर शेखावत, आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके पास कई मामले आते होंगे ड्रग्स की लत को लेकर, तो ऐसी क्या मजबूरी रहती है उस व्यक्ति की कि वह इसकी तरफ खींचा चला जाता है?
अगर हम नशे की आदतों की बात करें प्रियंका जी, तो इसके बहुत सारे कारण हैं जो एक इंसान से स्टार्ट होते हैं और समाज तक वो सबकी जिम्मेदारी उसमें होती है। जैसे जेनेटिक फैक्टर है, अगर कोई घर में नशा करता है तो उसमें बच्चों को नशा की आदत होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, जो बच्चे जो नई नई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो स्टार्ट होता है नशे की शुरुआत जो होती है वो एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट होती है, तो जिनको एक्सपेरिमेंट करने की आदत है, जिनको सेंसेशन सिकिंग, जो नई नई चीजें ट्राई करते हैं, जिन लोगों को थोड़े इम्पल्सिव होते हैं, हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, जल्दी से ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इस तरह के बच्चों की संभावनाएं ज्यादा होती है। ऐसे परिवार जिनमें कि कोई नशा कर रहा है, साथ में परिवारों परिवार में माँ बाप के बीच में या परिवार में कुछ मनमुटाव चल रहे हैं, फैमिली नेग्लेक्ट है, अब्यूज है, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसके अलावा परिवार का एटीट्यूड क्या है, जहां पे परमिसिव है उनको, उनका एटीट्यूड है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आजकल बच्चे करते ही हैं, वो जो परमिसिव एटीट्यूड है वो उसमें उससे संभावना बढ़ जाती है नशा करने की। ये और जो समाज के अंदर किस तरह से जो नशा है जो समाज में एक्सेप्टेड है, जो कुछ हद तक माना जाता है कि कोई बात नहीं, जैसे शराब, तंबाकू, भांग, वो ऐसे नशे हैं जिनकी तरफ ज्यादा चले जाते हैं क्योंकि वो समाज में बहुत ज्यादा उसको ऑब्जेक्शन किया नहीं जाता है, परमिसिव तरीके से है तो एक्सेप्टेड है, वो नशे की तरफ ज्यादातर लोग चले जाते हैं। तो ये जो है वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोग नशे की तरफ जाते हैं।
तो हम श्रोताओं को ये कहना चाहेंगे कि किसी तरह का भी नशा खराब है आपकी सेहत के लिए, आपके परिवार के लिए और देश के लिए। सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़े हैं दिल्ली से धर्मवीर जी। हेलो,
नमस्कार जी।
नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, प्रश्न पूछें।
धन्यवाद, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है। डॉक्टर साहब नमस्कार, हमारे एक्सपर्ट को नमस्कार।
नमस्कार
डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो समाज में अगर कोई व्यक्ति अगर सब तरह के नशे करके छोड़ दे, उसके बाद उसके ऊपर माइंड में क्या साइड इफेक्ट आता है, क्या वो चिड़चिड़ा हो जाता है या बिल्कुल उसको नशे की जो लत वो बिल्कुल नहीं लेता, ये कुछ भी लेता रहा है तो वो अब कुछ भी नहीं लेता, तो उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? घर परिवार में वो अभी दूसरों को परेशान भी करना शुरू कर देता है, नशा उसको चाहिए होता है, अगर उसको थोड़ा नशा मिलता रहे तो वो ठीक रहेगा, या बिल्कुल छोड़ दे तो तब परेशान रहता है, इसके लिए साइकिल आप क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब? धन्यवाद।
देखिए, कोई भी नशा है वो जब भी लंबे समय तक किया जाता है धर्मवीर जी, वो शरीर में ऐसे बदलाव लाता है, दिमाग में भी ऐसे बदलाव लाता है जिसकी वजह से उसकी आदत और बढ़ती जाती है, उसके दिमाग में ऐसे बदलाव आ जाते हैं कि उसकी तलब और बढ़ जाती है और वो उसके बिना नहीं रह पाता है, उसको उसके बाद सिर्फ नशा ही दिखता है और कुछ उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, उसके लिए ना परिवार महत्वपूर्ण है, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ ऐसे नशे हैं जो करने पर उनका जो दुष्प्रभाव है वो शरीर में इतना होता है कि वो लंबे समय तक रहता है, जैसे कि शराब की वजह से लीवर खराब हो जाता है, तो उसके बाद तो लीवर एक बार खराब, बहुत ज्यादा खराब हो गया तो ठीक नहीं हो सकता है। वैसे ही जो बच्चे वो इनहेलेंट्स लेते हैं, जो पेंट वगैरह सूंघते हैं, उन लोगों के दिमाग में इतना बदलाव आ जाता है कि फिर वो ठीक नहीं हो पाते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति है कि अब नशा एक बार उसने स्टार्ट कर दिया और उसके बाद उसको जैसे ही मना करते हैं या कुछ करते हैं तो वो अब किसी न किसी तरीके से अपना वो मना कर और नशे की तरफ मजबूर कर देगा घर वालों को कि वो उसको पैसा दें या कुछ इस तरह से माहौल बनाएगा कि उसको नशा करने के लिए परमिशन मिल जाए परिवार में, तो ऐसे में उनसे बात करना बेहद जरूरी है। कभी कभी मौका मिले तब उनसे बात करना चाहिए कि इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, आगे हम इस तरह से कैसे चलेगा, आपके शरीर में जो बदलाव आ रहा है, जैसे चलो तुम शराब पी रहे हो कोई बात नहीं, पर तुम्हारा जो लीवर है उस पर नुकसान हो रहा है, चलो लीवर का टेस्ट करा लेते हैं, उसमें देखते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ आई है या तुम्हारे और जांचें हैं जो करवाते हैं जिनसे अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उनके लिए इलाज करवा देते हैं। ऐसा करने से उनको हम वापस इलाज की तरफ थोड़ा ले जाने की संभावना रहती है।
नीरज, जैसे ऐसे मामले आते हैं कि वो चपेट में चला जाता है और इनकार करने पर उसको चिड़चिड़ा हो जाता है जैसे उन्होंने पूछा, तो ऐसे में रिहैबिलिटेशन सेंटर्स का क्या रोल रहता है, और अगर हम कोई संपर्क करना चाहें तो ऐसी कोई हेल्पलाइन नंबर या कोई मैसेज आपके पास?
देखिए प्रियंका जी, सरकार ने इस मामले में जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की एक 24/7 हेल्पलाइन जिसको 1446 जिसका नंबर है उसको चलाया है, और उस हेल्पलाइन पर कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कांटेक्ट कर सकता है। उस हेल्पलाइन से आपको काउंसलिंग से रिलेटेड और जितने भी रिहैबिलिटेशन सेंटर बने हैं उनसे संबंधित जानकारी मिल जाती है, और उस जानकारी को लेकर आप उन रिहैबिलिटेशन सेंटर या काउंसलिंग के लिए वहां पर अपनी हेल्प ले सकते हैं और साथ ही साथ इस नशे की जो आदत है उससे मुक्ति पा सकते हैं। और ये एक सेट प्रोटोकॉल टाइप का है जहां पर कि ये देखा गया है कि ये काउंसलिंग और रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है ये बड़े ही इफेक्टिव है नशे की आदत को छुड़ाने के लिए।
जी, हमारे दूसरे श्रोता जुड़े हैं बिहार के दरभंगा से, मोहन पासवान जी। हेलो
जी, नमस्ते मैडम।
नमस्कार,
पूरे टीम को प्रणाम।
जी आपका प्रश्न क्या है?
प्रश्न है कि सर समाज में जो वह विभिन्न प्रकार के नशाओं का शिकार हो रहा है काफी मात्रा में, इसके लिए क्या नियम और कानून बनाए गए हैं?
जी क्या स्ट्रिंजेंट कानून है? एनडीपीएस तो है जो कारोबार करते हैं, तो क्या संशोधन किए गए हैं? और जो नशा करता है क्या उनके लिए भी कुछ अलग से क्या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं और कुछ कानून भी हैं इनके लिए?
देखिए सरकार जो है इस मामले में बड़ी सजग है और एक जो एक्ट बना हुआ है एनडीपीएस एक्ट 1985 में, उसमें समय समय पर संशोधन भी किए गए हैं। अभी जो सरकार की तरफ से जो प्रावधान है दंड का उस एक्ट के अनुसार, वो जो ड्रग्स सीज होती है उसकी क्वांटिटी, उसके टाइप और उसका यूजेस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उस एक्ट के अंदर जो है स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी, उन तीन भागों में क्वांटिटी को बांटा गया है। स्मॉल क्वांटिटी के लिए जो दंड का प्रावधान है वो एक वर्ष का कारावास है, जबकि इंटरमीडिएट क्वांटिटी के लिए जो प्रावधान है वो 10 वर्ष से कम का कारावास है, और कमर्शियल क्वांटिटी के लिए जो प्रावधान है वो मिनिमम 10 साल है, जो कि कुछ केसों में डेथ पेनल्टी भी का भी प्रावधान है। इसके अलावा जो लोग नशे के व्यापार में इन्वॉल्व हैं उनको, उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए इस एक्ट के अंदर जो लोग इस नशे के व्यापार से जो भी संपत्ति अर्जित करते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, कार, गाड़ी, बंगला जो भी बनाते हैं, उन सब को भी इस एक्ट के अंदर फ्रीज किया जा सकता है। तो सरकार के पास ये भी प्रावधान है। इसके अलावा जो लोग कमर्शियल क्वांटिटी केस में इन्वॉल्व रहते हैं उनके बेल मिलने का प्रोविजन बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है, उनको आसानी से बेल नहीं मिल सकती है। एक बार जो पकड़ा गया वो लगभग 3 या 4 साल तक जेल के अंदर रहता है। तो नशे के कारोबार में जो लोग इन्वॉल्व हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए ये एक्ट जो है बहुत ही कारगर है और इस तरह के बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजन एक्ट के अंदर किए गए हैं।
डॉक्टर शेखावत, हमने देखा है कि बच्चे बहुत जल्दी इसकी गिरफ्त में आते हैं, तो क्या पीयर ग्रुप फैक्टर कितना हावी रहता है इन पर?
देखिए पीयर प्रेशर ऐसा माना जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण कारण है स्टार्ट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अपने पीयर में वो अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, ये एक या फिर पीयर बाकी लोग ले रहे हैं इसलिए उनको भी लेना है, क्योंकि वो उस ग्रुप का उसका मेंबर बनना है, सदस्य बनना है, उनका हिस्सा बनना है, तो उनको वो लेना ही पड़ेगा। इस तरह का जो प्रेशर है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें।
जी हाँ, तो जैसी संगत वैसी रंगत, तो ऐसी सोबत से जरूर बचकर रहिए। और अगर आपको कुछ लगता है, अगर आपका कोई फ्रेंड, अगर आपका दोस्त मित्र आपको ऐसा करने के लिए कहता है, तो तुरंत अपने अभिभावकों से, शिक्षकों से जरूर बात करें। नीरज जी, जो हमारे देश का युवा है, रीढ़ है, बैकबोन है, तो उन तक इसकी पहुंच आसान कैसे हो जाती है ड्रग्स और ये मादक पदार्थों की?
जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि नशे की लत जो है वो कई कारणों से होती है, वन ऑफ द रीजन इज पीयर प्रेशर। तो जब पीयर प्रेशर ज्यादा होता है तो डिमांड उसकी बढ़ जाती है, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ने से जो सप्लाई साइड है, जो लोग उसका व्यापार करते हैं उनको जो है उसमें ज्यादा फायदा दिखता है, और इस वजह से वो सप्लाई की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं, सप्लाई ज्यादा करते हैं। इसलिए इस चीज में ये ध्यान रखना जरूरी है कि जहां पर भी नशे की लत लोगों को है, वहां पर उनका परिवार जो है उनका ध्यान रखे और उनको कोशिश करके नशे की लत छुड़ाए, जिससे कि जो है डिमांड कम हो, डिमांड कम होगी तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो जो ये नशे का व्यापार का जो इकोनॉमिक है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होगी।
डॉक्टर शेखावत, आपने बताया था कि एक कारण है जो बिहेवियर चेंज होता है, चिड़चिड़ापन आता है, इसके अलावा उनकी आदतों में, हाव भाव में, जो सेवन करने लगता है ड्रग्स का, बोलचाल में किस तरह का परिवर्तन देखा जा सकता है?
देखिए जो लोग नशा करते हैं उनमें तीन तरह के दिखते हैं लक्षण। एक तो होते हैं फिजिकल सिम्टम्स, जो फिजिकल सिम्टम है कि उनके कभी वो बहुत एनर्जेटिक लगते हैं तो कभी वो बहुत कम एनर्जी में लगते हैं, उनकी जो सोने की आदतें बदल जाती है, कभी ज्यादा सोते हैं कभी कम सोते हैं, उनका खाने की आदतें बदल जाती है, कभी वो कम खाते हैं कभी ज्यादा खाते हैं, उनके जो आंखों में अगर भांग गांजा लेते हैं तो आंखें लाल हो जाती है, उनके वजन में कमी आ जाती है, अपनी केयर का अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, उनके उनको कफ हो सकता है, उनके हाथों में निशान हो सकते हैं नशे के, या कभी कभी बच्चे ने पहले वो आधी मतलब हाफ स्लीव शर्ट पहनता था, फुल स्लीव पहनने लगा अपने निशानों को छुपाने के लिए, बार बार अगर उसका एक्सीडेंट हो रहा है या उसके कफ हो रहा है या उसके नाक से पानी आ रहा है या बहुत थका हुआ रहता है, बिना वजह सुस्त रहता है, ये सब वो कारण है जिनसे हम फिजिकल सिम्टम्स है जिनसे पहचान सकते हैं। बिहेवियर में उनके बहुत बदलाव आता है, जो कि एक ऐसा रहता है कि आइसोलेटेड रहने लगे हैं, जो सब पहले परिवार के साथ बैठ के खाना खाते थे अब बातों को टालने की कोशिश करते हैं, अकेला खाना खाने की कोशिश करते हैं, स्कूल में जाना बंद कर दिया, स्कूल को मिस करते हैं, स्कूल में उनके मार्क्स कम होने लगे हैं, और जो भी शादी के फंक्शन है परिवार के फंक्शन है उनको मिस करने लगते हैं, थोड़े सिक्रेटिव हो गए हैं, अपने फोन को अपनी चीजों को किसी को टच नहीं करने देते, कमरे में अकेले रहना पसंद करते हैं, और उनकी जो पैसा ज्यादा मांगने लगे हैं या पैसा घर से चुरा भी लेते हैं, या परिवार में आपस में जो है वो बच्चों के दूसरे भाई बहनों के साथ झगड़ा करने लगे हैं, उनका जो दोस्त हैं वो बदल गए हैं, पुराने दोस्तों के बजाय ऐसे दोस्त हो गए हैं जो कि उनको जो नशा करते हैं, उनके मूड में एकदम से चेंज हो जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, आइसोलेटेड रहने लगते हैं,
बेसिकली एकाकीपन जो आ जाता है। अगर आप इनमें से कोई भी लक्षण जो डॉक्टर ने बताए हैं अगर आप नोटिस करें तो जरूर उनसे बात करें, और अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर से कंसल्ट भी करें। जो श्रोता अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं हम उनको बता दें कि आप कार्यक्रम पब्लिक स्पीक सुन रहे हैं, चर्चा हम कर रहे हैं नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे से निपटान, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के उप महानिदेशक नीरज गुप्ता और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर लोकेश शेखावत। और हमारे नंबर्स हैं 2331-4444, 2371-7106। नीरज जी, अगर जैसे देश में 2006-13 की तुलना में 2014-22 की अवधि में 30 गुना अधिक ड्रग्स की जब्ती हुई, सरकार इस समस्या से बहुत सख्ती से निपट रही है, खासकर जो जब्त मादक पदार्थों को नष्ट करने का अभियान चलाया गया, उससे कितना फर्क पड़ा है?
देखिए, सरकार जो है इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझती है, इसलिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उन्होंने 2047 तक देश को नशा मुक्त करने का स्वप्न भी देखा है। उसी डायरेक्शन में जो है जितनी भी एजेंसीज हैं, जो सेंट्रल एजेंसीज और स्टेट एजेंसीज हैं, वो ज्यादा से ज्यादा ड्रग्स के सीजर पर काम कर रही हैं, और ड्रग्स के सीजर के साथ साथ उनके डिस्पोजल पर भी सरकार का बहुत ध्यान है। उसके लिए कानून में अमेंडमेंट भी किया गया है, और अमेंडमेंट के बाद अब जो है सरकार जो है वो ट्रायल से पहले जो भी ड्रग्स सीज होती है उसको डिस्पोजल के लिए स्पेशल प्रावधान है, जहां पर कि जितनी भी ड्रग्स सीज होती है उसको समय से डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। उसका फायदा ये होता है कि जो ड्रग्स है उसको जो है अगर आप स्टोर करते हैं, ज्यादा दिन तक स्टोर करते हैं, तो उससे वो जगह घेरता है वहां पर, और उसका जो है एक ऑफिस का एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब ड्रग्स को जो है वो समय से ही डिस्पोजल किया जाता है। अगर देखा जाए तो पिछले 2 सालों में राज्य सरकारों ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर जितनी भी एजेंसीज काम कर रही हैं, उन्होंने 15 लाख KG से ज्यादा ड्रग्स को डिस्पोज ऑफ किया है।
तो किस किस तरह के ड्रग्स होते हैं ताकि हम लोगों को बता सकें और वो अलर्ट रहें इसको लेकर?
अभी हाल ये देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो यूज होता है ड्रग्स वो है गांजा, अफीम और हेरोइन। उसके अलावा जो आजकल डिजाइनर ड्रग्स हैं MDMA, ATS और भी तमाम तरह की डिजाइनर ड्रग्स हैं, उनका भी उपयोग थोड़ा बढ़ गया है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं उनका भी कुछ जगह कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं।
डॉक्टर शेखावत, जैसे कई बार देखा गया है जैसे 14-15 साल उम्र के बच्चे ड्रग की लत में आ जाते हैं और चोरी चकारी जैसे गलत काम करने लग जाते हैं, तो उनको ये पता ही नहीं रहता कि वो किस दलदल में घुसे जा रहे हैं, और खासकर जो संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरह से उनको अलर्ट, किस तरह से जागरूक किया जाए?
सबसे पहले तो माता पिता को, परिवार को हमेशा बच्चे पर नजर रखनी चाहिए, उसको मॉनिटर करना चाहिए, सुपरवाइज करना चाहिए। परिवार में माता पिता को एक रोल मॉडल की तरह काम करना पड़ता है, कि वो नशा नहीं करें, वो परिवार के अंदर नशे के बारे में एटीट्यूड जो है उनका नेगेटिव हो और परमिशन जो है हमारा परमिसिव एटीट्यूड ना हो। उसके साथ ही बच्चों से कम्युनिकेट करते रहें, बात करते रहें। अगर कोई भी लक्षण जो पहले हमने चर्चा की है, अगर वो कोई भी लक्षण नजर आता है, कुछ बदलाव अगर नजर आता है, तो उसी समय उसको पहचानना है और बिना देरी किए, क्योंकि बहुत बार देरी बहुत कर देते हैं कि कोई बात नहीं आजकल के बच्चे करते हैं छोड़ते हैं, बिना देरी किए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात करके उनको और काउंसलर्स या साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट किसी से एक बार उनकी बात करवाना बेहद जरूरी है। अगर घर से पैसा चोरी हुआ है वो एक गंभीर विषय है, ऐसे विषय पे बच्चे को उसी समय से बहुत जरूरी है कि उससे बात करके, बजाय कि उसको डांटने की बजाय कि उसको और आइसोलेट करने की बजाय कि उसको और लोगों को रिश्तेदारों को बताने की बजाय और बाकी लोगों को पता चले, उससे पहले उसको काउंसलर्स और उनके पास ले जाना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है।
नीरज जी, सरकार क्या कर रही है लोगों को जागरूक करने के लिए इस गंभीर मुद्दे को लेकर?
सरकार जो है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंट जो है, उसका काम है जो लोगों में जागरूकता फैलाना, और सरकार के बहुत सारे प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंट के थ्रू चल रहे हैं। उसके अलावा एनसीबी भी अपने समय समय पर जोनल यूनिट्स के द्वारा, एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के द्वारा और स्टेट राज्य सरकारों की जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके द्वारा जागरूकता प्रोग्राम चलाती रहती है। स्टेट गवर्नमेंट भी जितनी है उनकी जो एजेंसीज हैं वो भी जागरूकता प्रोग्राम में लगी हैं, ताकि लोगों को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों का जो दुष्प्रभाव का पता चले और वो दुष्प्रभाव से बचने के लिए नशे की लत में ना पड़े, उसके लिए सरकार जो है वो पूरे साल कार्यक्रम चलाती है।
जी, जैसे अगर कोई इस बारे में, किसी को अगर सूचना मिलती है मादक पदार्थों के कारोबार के बारे में या लेन देन के बारे में, वो सूचना देना चाहे सरकार को और गुप्त रखना चाहे पहचान, तो किस तरह से कर सकता है?
प्रियंका जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। लोगों के मन में डर रहता है कि अगर मैं इन्फॉर्मेशन किसी भी एजेंसी को दूंगा तो हो सकता है वो सूचना गुप्त न रखी जाए, लेकिन इसके लिए मैं सभी श्रोताओं को जो है एश्योरेंस देना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से जो है एक तो एक रिवॉर्ड स्कीम है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति अगर मादक पदार्थों से संबंधित कोई सूचना किसी एजेंसीज को देना चाहता है तो उस पहले तो उसका नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा, साथ ही साथ अगर उस सूचना के आधार पर कोई भी सीजर होता है तो उस सीजर की क्वांटिटी और क्वालिटी के बेस पर उसको उचित इनाम भी दिया जाएगा। जो श्रोतागण हैं वो सब ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन को जो है वो एनसीबी के कंट्रोल रूम, जितने भी जोनल यूनिट है उनमें बने हुए हैं, उनका नंबर है वहां पर दे सकते हैं। एनसीबी की वेबसाइट पर सबमिट ए टिप करके एक ऑप्शन है, वहां पर इस सूचना को दिया जा सकता है। इसके अलावा जो लोकल पुलिस है, लोकल एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जैसे 112 पुलिस का नंबर है, उस पर भी इस सूचना को दिया जा सकता है कि मादक पदार्थों से रिलेटेड सूचना को वहां पर दिया जा सकता है।
डॉक्टर शेखावत, अक्सर ऐसा भी देखा गया जब कोई व्यक्ति इस नशे की आदत से बाहर निकल कर आ गया, उसके साथ ये स्टिग्मा लग जाता है कि ये तो नशा करता था, और समाज उसको इस तरह से देखता है जैसे उसने पता नहीं कितना बड़ा अपराध कर दिया, जबकि वो निकल कर आया, तो उसकी कितनी संभावनाएं रह जाती हैं फिर से इस दलदल में घुसने की?
देखिए, समाज का जो पहले जो नशा करने वाला अपने आप को समाज से अलग करता है और उसके बाद समाज उसको अपने आप से अलग कर देता है। समाज में हमें ये समझने की जरूरत है कि इसको एक बीमारी की तरह इलाज करें, जैसे बहुत सारी बीमारी, कोविड को लेकर भी बहुत स्टिग्मा हो गया था, टीबी को लेकर बहुत स्टिग्मा है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको लेकर स्टिग्मा है। ऐसे केस में हमें इसको भी एक बीमारी की तरह लेना चाहिए और जब वो आ जाए उसको समाज में उसको स्वागत करना चाहिए, उसको वास्तव में प्रोत्साहित करना चाहिए कि आपने ये किया, आपने बहुत अच्छा है, और उनके एक एक कदम के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। आपने उन्होंने अगर एक दिन भी छोड़ा है, उन्होंने छोड़ने के लिए हाँ भी करी है, तो हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और परिवार में और समाज में वापस उनको जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए।
जैसे एनडीपीएस हमारे पास कानून है जिसमें मादक जो पदार्थ हैं या मन प्रभावी पदार्थों के उत्पादन, निर्माण, खेती, इन सब पर प्रतिबंध है, तो इसे अवैध खेती आज भी हम कई जगह देखते हैं, क्षेत्रों में हो रही है इन मादक पदार्थों की, तो उससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है?
जैसे जो खेती अवैध खेती होती है उसके लिए एनसीबी जो है लोकल एजेंसीज जितनी भी होती हैं उनके साथ एक अभियान चलाती है जब भी ये खेती का समय आता है, खेती करने का समय आता है, और जहां जहां भी ये खेती हो रही होती है वहां पर टीम्स जाती हैं और वो उस खेती को नष्ट करती हैं जहां पर अवैध खेती होती है, और जो अवैध खेती में लोग इन्वॉल्व होते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।
जी, और अगर देखा जाए तो पिछले साल डार्क वेब के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी गिरोह के, एक बहुत बड़े गिरोह के कह सकते हैं, पर्दाफाश किया गया, तो जो ड्रग पेडलर्स हैं वो किस तरह से नई तकनीक के जरिए अपने पैर पसार रहे हैं ताकि लोगों को पता चले?
देखिए, ऐसा देखा गया है कि सोशल मीडिया के थ्रू, डार्क वेब के थ्रू जो है ड्रग पेडलर्स जो है वो ड्रग्स बेचने की कोशिश करते रहते हैं। एनसीबी और जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका भी प्रयास ये रहता है कि जो लोग इस तरह के कार्य में इन्वॉल्व हों उनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। एनसीबी इस संदर्भ में समय समय पर स्टेट की एनफोर्समेंट एजेंसीज और अपने सभी ऑफिसर्स के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग अरेंज करते रहते हैं, उनकी कैपेसिटी को इम्प्रूव करते रहते हैं, सो दैट कि जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है और उससे रिलेटेड जो भी तस्कर लोग जो उसका फायदा उठाते हैं उनको पकड़ा जा सके और उनके खिलाफ प्रॉपर कानूनी कार्रवाई की जा सके।
डॉक्टर शेखावत, जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं नशा मुक्ति के लिए, तो वो किस तरह से काम करते हैं?
रिहैबिलिटेशन सेंटर जो वास्तविक में रिहैबिलिटेशन सेंटर है वो और जो डीएडिक्शन सेंटर्स है दोनों में फर्क है। नशा मुक्ति केंद्र में जाना एक रिहैबिलिटेशन की पहली शुरुआत है क्योंकि वहां से वो नशे को छोड़ने की शुरुआत होगी और उसके बाद वो रिहैबिलिटेशन का मतलब है समाज में वापस जुड़ना।
जी,
तो पहले वो नशा छोड़ेगा और डीएडिक्शन सेंटर्स बहुत सारे होते हैं उनमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो नशा कर रहा है उसके जो नशे से होने वाली तकलीफें हैं, परेशानी है, उसके लिए उचित दवाइयां दी जाती है क्योंकि बहुत सारे रोगियों को ये चिंता होती है कि मेरी जो तकलीफ होगी छोड़ने के बाद मैं उस तकलीफ को सहन नहीं कर पाऊंगा। तो हम जो दवाइयां हैं इतनी कारगर हैं कि वो जो होने वाले नशे को छोड़ने पर जो होने वाली तकलीफें हैं उन सबको बहुत अच्छे से ठीक कर देती हैं। उसके बाद उनका ऐसी दवाइयां हमारे पास हैं जो कि नशे की तरफ उनकी जो लत है, जो उनकी इच्छा है, तलब है, उसको भी कम करने में वो बहुत प्रभावी हैं। तो ऐसा अभी जो इलाज है वो बहुत अच्छा आ गया है। उसके बाद उनका जो दूसरा कदम है, जो हमारे यहाँ पे सब जगह होते हैं जो साइकेट्रिक सोशल वर्कर होते हैं, वो उनको मदद करते हैं कि उनको अब कैसे अपने काम पे जुड़ना है, कैसे उनको कौन कौन से जगह है जहां उनको काम किया जा सकता है, कर सकते हैं।
रांची से हमारे एक श्रोता जुड़े हैं, राजेश जी, हेलो।
जी मैम, नमस्कार।
नमस्कार, जल्दी से अपना सवाल पूछें।
मैम, मेरा ये सवाल है कि अगर ड्रग एडिक्ट होने के साथ साथ कोई क्रॉनिक इलनेस है जैसे डायबिटीज या और कुछ, तो क्या ड्रग्स छोड़ने में जो दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं उनसे कोई नुकसान होता है, इस बात का कैसे ख्याल रखा जाता है?
इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, चाहे कोई भी डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, कुछ भी हो। थोड़ा मुश्किल जरूर होता है क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में जब नशा छोड़ते हैं तो हमेशा वो अच्छे सेंटर पे ही करना चाहिए ताकि जो डायबिटीज की से संबंधित या हाइपरटेंशन से संबंधित जो समस्याएं आती है उनको भी साथ में हैंडल किया जा सके, पर ये बिल्कुल संभव है।
जी नीरज जी, आपसे अंत में, हम कार्यक्रम के अंत में चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो इस ड्रग्स की लत से दूर रहें।
मैं सभी युवाओं को कहना चाहता हूं कि हम ये युद्ध लड़ रहे हैं, युद्ध में जो है सब एक साथ आएं और नशे को ना कहें, जिंदगी को हां कहें और एक हेल्दी लाइफ जिये।
जी बिल्कुल सही कहा, से नो टू ड्रग्स एंड येस टू लाइफ। नशे से दूर रहना तो आसान है लेकिन इसके मकड़ जाल में फंसकर इससे निकलना बहुत मुश्किल है, तो इसी मूल मंत्र को अपनाएं और जीवन में आगे बढ़े, एक सुखद जीवन जिए। समय कह रहा है आपसे अनुमति ली जाए। हम अपने सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और आज चर्चा में शामिल होने के लिए हम नीरज जी और डॉक्टर लोकेश, आप दोनों का धन्यवाद भी करते हैं। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप हमें सुझाव अवश्य दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है airnstalks@gmail.com और ये आप कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहें तो लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in। पब्लिक स्पीक का ये अंक आज यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात को ठीक 9:30 बजे एक और विषय के साथ आपके लिए उपस्थित होंगे। तब तक प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम सम्पन्न करने की। नमस्कार।